Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hai Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और सरकार बनने के बाद आज इस सप्ताह दूसरा दिन कारोबार हुआ, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है बाजार। हम इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे और चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिजनेस एनालिस्ट विशाल दहिया। विशाल, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में।
धन्यवाद हर्ष जी, थैंक यू लालिमा जी।
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
Thank you, Harsh. Yes, the headlines first, friends. Domestic equity benchmark indices end almost flat. Sensex closes at 76,457. Nifty settles at 23,265. Centre announces 1,39,750 crore rupees tax devolution to the states. And Brent crude trading above $80 per barrel in global crude market.
शेयर बाजारों में आज कल के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं। सेंसेक्स 76,457 पर तो निफ्टी 23,265 पर रहा। केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए 1,39,750 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है और ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $80 के ऊपर हुई। भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों ने अपना पूरा विश्वास दिखाया हुआ है। बाजार अभी ऊंचाई पर है और आज भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। बाजार कल के सपाट स्तर पर ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मात्र 34 अंक गिरा और 76,457 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 6 अंक की गिरावट के साथ 23,265 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 162 कंपनियों के शेयर पिछले 52 सप्ताह के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहे हैं, जबकि 13 कंपनियों के शेयर 52 सप्ताह के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 16 कंपनियों के शेयर आज फायदे में रहे, जबकि 14 कंपनियों के शेयरों में मामूली गिरावट रही। लार्सन टूब्रो, टाटा मोटर्स और मारुति के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल रहा, जबकि कोटक बैंक, एशियन बैंक और आईटीसी के शेयर सबसे ज्यादा गिरे एशियन पेंट्स और आईटीसी के शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं।
All right, a look at the detailed stocks now. India's equity benchmark indices closed almost flat today as investors preferred to remain on the sidelines awaiting further speculation. The Sensex slid 34 points or 0.04% to close at 76,457 due to selling at the fag end. Nifty had a slim gain of 6 points or 0.02% to settle at 23,265. In the NSE index, 162 companies hit their 52-week high and 13 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index up by 0.74%, while the small-cap index rose 0.95%. 16 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Larsen & Toubro 1.64%, Tata Motors 1.26% and Maruti 1.14%. Conversely, the three major laggards were Kotak Bank 1.44%, Asian Paints 1.18% and ITC 0.95%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were telecommunication 1.93%, oil and gas 1.84% and 1.42%. whereas consumer durables 0.27%, banking 0.26% and healthcare 0.22% were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 3,969 companies, the shares of 2,461 companies advanced and 1,402 declined and 106 remained unchanged. And a look at the rupee, Harsh.
रुपए की भी बात कर लेते हैं. आज रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर के मुकाबले बढ़त रही है. एक डॉलर की कीमत 83.57 रुपये रही और डॉलर इंडेक्स आज 0.21% की बढ़त के साथ 105.37 पर चल रहा था. और बाजार के बारे में अपने एक्सपर्ट विशाल दहिया से बात कर लेते हैं. विशाल, देखिए लगातार बाजार में एक जब चुनाव होते हैं और नई सरकार का बनना होता है तो एक संशय की स्थिति रहती है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय शेयर बाजार जो खासतौर पर सेंसेक्स और निफ्टी हैं, इन्होंने लगातार एक विश्वास दिखाया है निवेशकों ने, न सिर्फ डोमेस्टिक निवेशकों ने बल्कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी दिखाया. इसलिए हमने देखा कि बाजार में बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा. अगर पिछले एक हफ्ते 10 दिन का ग्राफ देखें तो लगातार बाजार बढ़त की ओर बना हुआ है. आपकी त्वरित टिप्पणी क्या है इस पर?
देखिए, इसमें हर्ष जी दो तीन फैक्टर्स हैं. सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सही कहा, बाजार में जो गिरावट 4 तारीख को देखी गई थी नतीजों के दिन, उसके बाद बाजार ने अपने आप को संभाला है और वो एक नेचुरल प्रोसेस है. इससे पहले भी हम लोग चर्चा इस पर कर चुके हैं कि जब चुनाव का समय होता है तो या तो चुनाव के दौरान या चुनावी नतीजों के आसपास थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजार में जरूर दिखाई देता है. लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से कंसोलिडेशन जिसे कहा जाए या बाजार का थोड़ा सा पॉजिटिव क्यू पे खुलना और फिर उसके बाद थोड़ा गेन के बाद थोड़ा सा नीचे आकर बंद होना, वो एक चीज इंडिकेट करता और वो ये कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का समय है. और थोड़ा सा अगर डीपर एनालिसिस आप करके देखेंगे तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि नई सरकार आ चुकी है. नई सरकार के सामने बजट पेश करने का सबसे पहला काम है, जो कि आने वाले लगभग हफ्ते भर में हम देख सकते हैं कि उसकी कुछ संभावनाएं दिखेंगी. हो सकता है कुछ पॉलिसी चेंजेस भी हों, हो सकता है कुछ पॉलिसी सस्टेन भी किया जाए. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स की, उसके हिसाब से चला जा रहा है. लेकिन जो बैलेंस बनाया जा रहा है वो हम स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की तरफ देखें तो वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस है दोनों ही सेगमेंट्स की पिछले 2 दिन से. और ओवरऑल इंडाइसेस में खासतौर पर निफ्टी में अगर हम देखें तो 23,400 के आंकड़े के आसपास वो जो हर्डल प्वाइंट जिसको बोला जा रहा है वहां बाजार पिछले 2 दिन से अटक रहा है. अगर ये 23,600 से ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद इसे हम 24,000 और 25,000 तक जाना जाते हुए देख सकते हैं. लेकिन अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो नीचे जो जो जिसे सपोर्ट पॉइंट कहा जाता है वो 23,150 के आसपास है निफ्टी के लिए, तो वो थोड़ा सा फिर चिंता की बात जरूर हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए. लेकिन अभी वो जिसे कहा जाए कि वो थोड़ी सी दूर की कौड़ी अभी है वहां पर.
और खास करके जब आप इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दरअसल हम इन्वेस्टर्स के लिए तो चिंता कभी नहीं होती, क्योंकि अगर आपने किसी बढ़िया कंपनी के शेयर में लगाया है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ठीक ठाक हैं तो आपका एक पीरियड रहता है. एंड उस पीरियड के दौरान अगर वो 3 साल 4 साल का पीरियड है, 2 साल का है, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से. लेकिन हां, अगर आप ट्रेडर हैं विशाल, तो जरूर आपको नुकसान हो सकता है. और मुझे लगता है कि ट्रेडर इसके लिए तैयार रहते हैं. बाय सेल, बाय टुडे सेल टुमारो, या बाय टुडे और सेल टुडे के जो लोग हैं वो ट्रेडर हैं और उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. आई थिंक लालिमा, यू वांट टू आस्क समथिंग.
यस, आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट विशाल जी जस्ट मेंशन नई सरकार. विशाल जी, सरकार नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट मेनी मिनिस्टर्स कंटिन्यू टू होल्ड द रिटेन द ओल्ड पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट वंस पर्टिकुलरली, एंड दिस मीन्स दैट देर इज गोइंग टू बी अ सर्टन स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी. एंड सो दैट्स वाई द मार्केट्स इनिशियल टाइम इट वेंट डाउन एंड नाउ इट्स स्टेबिलाइज्ड एंड दो टच द अनप्रेसिडेंटेड 77, इट्स बैक टू 76, विच इज नॉट बैड. व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट?
इंडीड, इट इज
मार्केट्स लव स्टेबिलिटी.
Yes, indeed. And you know, the reason why we are looking at those figures is because of a simple fact. And that fact is that you're talking about the formation of the new government. The clear indication from the portfolio allocation which happened yesterday is that 240 is the new 272. So that shows the stability of the government, that shows the continuity of the policy decisions which had been taken for the past 10 years. There are all key names, the top five ministries, the other key ministries as well are retained by the same people. That also shows the confidence the Prime Minister has in his, Council of Ministers, in those who have been with him for the past 10 years. And that confidence then moves on from this to the markets as well. When I was talking about the policy aspects, this new government has to, make policy for the next 5 years, and as the Prime Minister has been pointing out, till 2047 as well. So there are certain tweaks which come along, on the way as well, depending upon what the current economic situation or the overall international scenario and situation is. So perhaps some of the long-term investors or the short-term investors, specifically in the large cap segments, do believe that this is the time for them to do some profit booking, wait for what the government has to say on larger policy issues, and then come back to the market, which is perfectly natural for these kind of investors. But then again, look at small cap and mid cap segments, it is clear indication that as far as those segments are concerned, that is basically on the sustained economic growth as well. We've just had GDP numbers coming in. Yes. We've just had the other parameters also being pointed out. New government has taken over, as I was saying, new normal again. The new normal is the old normal only. Yes. So that continuity part is always there.
Yeah. और ये कंटिन्यूटी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज विशाल ने उठाई है क्योंकि जब कंटिन्यूटी होती है खास करके गवर्नमेंट में तो पॉलिसीज भी कंटिन्यू होती हैं और इससे जो निवेशक हैं उनका भरोसा शेयर मार्केट में बढ़ता है और ये बात सिर्फ भारत के लिए ही नहीं लागू होती लालिमा ये बात पूरी दुनिया के लिए लागू होती है क्योंकि दुनिया में बहुत से कम ही विशाल ऐसे देश हैं जहां पे लगातार एक ही सरकार तीन टर्म के लिए आई हो और जब कहीं ऐसा होता है तो वहां एक स्थायित्व की बात हो जाती है कंटिन्यूटी की बात होती है स्टेबिलिटी की बात होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो भारत की ओर आते हैं और चूंकि ऐसा होगा इसकी संभावना थी इसी वजह से अगर आप पिछले एक साल दो साल का FIIs के इन्वेस्टमेंट यहां पे देखें तो वो काफी लगातार बढ़ रहा था और इसीलिए शायद भारत को दुनिया में निवेश के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जा रहा है
जी बिल्कुल और आपने दुनिया की बात कही हर्ष जी केवल दुनिया ही नहीं भारत में भी ये दूसरी बार ही हो रहा है कि लगातार कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनकर आ रहे हैं और वो सरकार बना रहे हैं पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार ऐसा मौका है कि किसी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने लगातार तीसरे चुनाव में जीत दर्ज की है और दोबारा से सरकार बनाई है
ऑन अ मैक्रो फ्रंट एवरीबडी वाज वेटिंग विशाल विद बेटेड ब्रेथ एज टू हू द फाइनेंस मिनिस्टर वुड बी बिकॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन डन इन द लास्ट 10 इयर्स मेकिंग इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द फर्स्ट 5 व्हेन द नेम वाज अनाउंस्ड नाउ डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट कैन स्ट्रेंथन द इकोनॉमी along with prudent fiscal management on a macro scale if I'd like to ask you macroeconomic scale is that possible or is it going to be tough or is it a challenging task for the government
you have the same finance minister
yes
you have the same prime minister
yes
you have the same commerce and industry minister as well
yes
and you have the same team supporting them in other ministries also So again, the continuity element is a strong element. When we talk about the focus areas seemingly are pretty much clear as of now. Mm-hmm. And we'll get more indications in the days to come as well. One is to ensure that the infra is sustained growth in the infrastructure sector. Mm-hmm. Now, the CAPEX, that is the capital expenditure, has seen an exponential growth in the past 2-3 budgets. I will not be surprised if there is a push in the upcoming budget on the CAPEX and the infrastructure as well. Second is social sector schemes.
Right.
Of late, there has been a lot of focus from the government on social sectors as well. So there will be spending. Where does the money go? The money will go to infra, the government money, the public money, the public expenditure will most likely go to, larger chunk will go to infra, then some to upcoming sectors like defense and the space as well. Then, of course, the social sector schemes, that is about the welfare of the people. And then social sector schemes, the money spent there also has an impact on the overall economic growth, because the healthier and the more educated the people of the country would be, the more wealthier the people of the country would be. So that's the formula which is usually applied. A happy population will eventually lead to a happy economy, and that is going to reflect on the stock market indices as well.
Right, well linked.
और चूंकि दुनिया की बात हो रही है, इसलिए बता दें कि एशियाई बाजारों का क्या हाल रहा। पूरे एशियाई बाजारों में आज गौर करें तो मिला जुला रुख देखने को मिला है। जापान का निकेई सूचकांक 0.25% बढ़ा। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी 0.15% की बढ़ोतरी रही, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.05% की गिरावट रही है। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 0.77% की गिरावट रही। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.39% गिरा है। और साथ ही यूरोपीय बाजारों में जहां अभी कारोबार चल रहा है लालिमा, वहां भी थोड़ी गिरावट ही देखी जा रही है। फ्रांस का कैक 40.81% की गिरावट पर है, जबकि लंदन का फुटसी 100.72% और जर्मनी का डैक्स 0.65% की गिरावट पर फिलहाल कारोबार कर रहा है।
Vishal ji, there are elections have been going on in the other countries. Does that impact the economy of the on the global scene? We have European Union, we have Italy, where Meloni has been elected.
Well, yes. See, very clearly, you know, the numbers which were pointed out by Harsh ji vis-a-vis the European markets, it's pretty much clear that those numbers are indicative of the impact the political situation in Europe right now is, the global cues when we talk about France, market is down. Germany, the market is down. England, that is UK, the market is down. You know, this is mainly because of the snap elections which have been, you know, sought by the French president after the results of the European Parliament. That has an impact. Just like, you know, the Indian stock market. During the elections, we saw a lot of volatility, market going up, market going down. The same happens in other democracies, in other economies as well. And for somebody like Emmanuel Macron to ask for a snap election at this point in time, clearly would have some impact, and that impact is pretty much clear on the European indices, and not just France and Germany and you know, UK as well, but maybe some other Asian markets also.
बिल्कुल, और आप देखें तो ठीक 4 जुलाई को इंग्लैंड में भी इलेक्शन होने जा रहा है, यूके में इलेक्शन भी होने जा रहा है, जो कि अर्ली इलेक्शन है।
2024 इज अ वेरी पेक्यूलियर ईयर वेयर 40 कंट्रीज आई बिलीव आर गोइंग टू इलेक्शन।
और जिस तरीके की इकोनॉमी की हालात अभी हमने यूके में देखी थी, और जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने उसको संभाला है, उसके बाद इलेक्शन में वो जा रहे हैं अर्ली इलेक्शन में, तो बिल्कुल सही कहा आपने।
साल के अंत में सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, वहां भी चुनाव है, यूनाइटेड स्टेट्स में।
बिल्कुल, वहां भी चुनाव है।
जी,
और यूएस मार्केट का क्या हाल रहा, जल्दी से बता दें लालिमा।
श्योर। वेल, ऑल थ्री मेजर यूएस इंडिसेस एंडेड इन ग्रीन यस्टरडे। नैसडैक एडेड 0.35%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज 0.18%, एंड S&P 500 गेन्ड 0.26%। व्हाट इज द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट इन द यूएस? व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन द यूएस?
वेल, यू नो, द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड परहैप्स आई माइट हैव बीन अ बिट टू क्रिटिकल ऑन दैट पार्ट, बट देन those are the numbers. Numbers don't lie, and it looks like, you know, the US economy has been in doldrums for quite some time. It's not just inflation, it's not just the unemployment numbers, but it's also the way the you know, the United States has to deal with the reputation of its currency, dollar, at the international level. There are a lot of push and pulls going on, and with the ongoing you know, geopolitical situation vis-a-vis Russia-Ukraine conflict, vis-a-vis the Middle East situation as well, vis-a-vis the Israel-Gaza Palestine situation as well. These things doesn't seem to be adding any positive cues to the U.S. economy. Domestically, the cues are not very positive at all. And the international यू नो स्टांस और दी यू नो स्टैंड विच यूएस हैज ऑलवेज हैड एंजॉयड और दी पोजिशन हैज एंजॉयड द इरोजन ऑफ दैट पोजिशन ऑल्सो टेंड्स टू हैव सम इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल्सो एंड द ग्लोबल प्लेयर्स ऑल्सो हु इंटरेक्ट विद द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी और इंडिविजुअल इंटरेक्शंस बिटवीन द इन्वेस्टर्स फ्रॉम वन कंट्री विद द अदर सो ऑल दिस प्रोजेक्टेड doesn't seem to have a very, very rosy picture for the United States economy. Fundamentals, of course, are very much clear. They will have to deal with the inflation. They will have to deal with the unemployment situation. And the U.S. Fed, the hawkish stand, is basically based on that only. They're trying to contain it. They're trying to ensure that, you know, it doesn't come down with the sound of big thud.
Is de-dollarization a reality?
As of now, I would call it a long shot, but then slowly and slowly, you know, things are moving up to towards that direction only, because with other major economies like Russia, for example, China as well, and one of the fastest developing economies like India also, you know, trying to find place for their own currency in this dollar hegemony, you know, international economy. Of course, it looks like this dollar has to fight against several other currencies at one go. And as I was saying earlier, the domestic situation is not very rosy. Their international position is also not the same as it was perhaps, you know, two decades ago. So things are changing, of course. Yeah. They're not going to change overnight, but things are changing.
Who knows, after a few years, months or years maybe, not months, we'll be talking about the rise and rise of the Indian rupee at some point of time, isn't it?
Naturally, aur dekhe ki kis tarike se center ne rajyon ko paison ka hastantaran kiya hai, jo tax devolution ki khabar hai, wo bataye aap.
Sure, here we go. The center has announced the release of a significant installment of 1,39,750 crore rupees as tax devolution to 28 states for the current month. According to the finance ministry, this will enable the state government to accelerate development and capital spending. Maximum 25,000 crore rupees have been devolved to Uttar Pradesh, followed by Bihar and Madhya Pradesh. The interim budget 2024-25 has a provision of over 12 lakh crore rupees towards devolution of taxes to the states. The finance ministry has said that more than 2,79,000 crore rupees have been devolved to states till the 10th of this month. So very interesting here, Vishalji. What exactly does devolution mean? And Uttar Pradesh followed by Bihar, Madhya Pradesh, what precisely would be the criteria of giving money to the states by the center?
Well, devolution of tax revenue to the states is basically the division of, the divisive pool of taxes which are collected by the central government. And this is mandated as per the Article 270 of the Constitution. Now, the Constitution, of course, gives an upper hand to the central government, to the center, in terms of legislation, in terms of administration, in terms of financial powers as well. But just to ensure that the states do not feel shortchanged, and let's not forget that the Constitution's inherent theme is also cooperative federalism, something which the current government in its previous terms had also harped upon several times, pointed out that yes, this is something which has to be done.
Yes.
As far as the devolution of this money is concerned, it's done based on the formula which is finalized by the Finance Commission. And the Finance Commission, again, is a body which is constituted as per the Constitution's Article 280. It is constituted for 5 years. Right now, from 2021 to 2026, we are following the formula which was devised by the 15th Finance Commission.
Mm-hmm.
And the 15th Finance Commission's formula clearly states that 41% of this money has to be given to the states, that is tax revenue which is earned by the government. Now, what does it all contain? It contains, the corporation taxes, the personal income tax, the CGST, the centers part of the IGST, that is integrated GST, since GST is the main tax now. So all this money taken together is then devolved to the states based on a formula. It is done through 14 installments.
Mm-hmm.
For this financial year, the figure is roughly, as you pointed out, around 12 lakh crore rupees. Almost one fourth of it, if I'm not wrong, almost one fourth of it has already been devolved by the central government. And this is an additional installment which was given on June 10th. This is how it works in terms of, giving financial portion, a portion of this taxes to the states. And it's not just the element when we talk about what does states get. States, in addition to this, also get grants in aid. They also get some sort of financial packages. Then if a natural calamity strikes, then the central government does go ahead and, helps those states through a particular package, maybe for floods or for a cyclone, the loss which has been incurred by the state government.
Mm-hmm.
And then in addition to that, last but not the least, is the center's loan to the state governments. State governments which are in need of money do take loan from the central government to service their schemes or, pay other some of their other liabilities.
Mm-hmm.
और विशाल, जब टैक्स डेवल्यूशन की बात हो रही है तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें 12 लाख करोड़ रुपए देने की बात इसमें कही गई थी, जो शायद लालिमा ने कहा भी है.
जी, जी.
जब फुल बजट आएगा तो क्या आपको लगता है कि इस 12 लाख करोड़ रुपए में कुछ और बढ़ोतरी अभी की स्थिति को देखते हुए सरकार कर सकती है फॉर मोर डेवलपमेंट्स?
देखिए, बिल्कुल कर सकती है. और हालांकि मैंने शुरुआत में कहा था कि 240 इज द न्यू 272, बट लेट्स नॉट ऑल्सो फॉरगेट, ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये गठबंधन की सरकार है. दो महत्वपूर्ण गठबंधन के सहयोगी हैं जिन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि उन्हें और फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है. तो कहीं ऐसा ना प्रतीत हो कि केवल दो को ही मदद की जा रही है. तो एक वो जो कॉर्पस है जिसकी हम बात करते हैं, वो जो फिगर है, शायद उसको बढ़ाया जा सकता है. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि अगर जीएसटी फिगर्स की तरफ अगर थोड़ा सा नजर डालें पिछले कुछ महीने की, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है. यानी कि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन के थ्रू पैसा ज्यादा आ रहा है. और फॉर्मूले के तहत अगर ज्यादा पैसा आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ज्यादा पैसा जाएगा. तो वो रिविजन फिगर्स में जरूर हो सकता है और उसका बेनिफिट हर राज्य सरकार को होगा उस फॉर्मूले के तहत.
Right.
बिल्कुल. और सोने चांदी की कीमतों पे बात करना जरूरी है मार्केट मंत्रा में, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि सोने चांदी की कीमत क्या रही. और फिर हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में ताकि लोग गाड़ी आराम से चला सके. तो सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही है. 5 अगस्त के अनुबंध वाले सोने की कीमतों में मामूली गिरावट रही और ये प्रति 10 ग्राम 71,406 रुपये पर रहा. 5 जुलाई के अनुबंध वाली चांदी की कीमतों में भी 1.19% की गिरावट रही है. 1 किलो चांदी की कीमत 88,950 रुपये रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट रही है. 1 औंस सोने की कीमत $2,324.30 रही है. चांदी की कीमत भी लगभग 0.25% की गिरावट के साथ प्रति औंस $29.34 रही है. और अगर विशाल तत्काल आपकी एक टिप्पणी चाहें, सोने की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा था और अभी थोड़ा सा थमा है, बल्कि थोड़ा सा गिरा है, सही वक्त है खरीदने का सुझाव देंगे आप?
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोना एक हेज इंस्ट्रूमेंट है. सोने को तो मैं कहूंगा कि आप जब खरीदना चाहें तब आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सोने की अगर इतिहास पर नजर डालें तो सोने ने हमेशा जो रिटर्न है जिसे कहा जाए वो जो जनरल मार्केट ट्रेंड रहता है उससे लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा ही दिया है. और खासतौर पर जब अगर स्टॉक मार्केट अगर जो है स्टेबल है और वो अपनी एक हाई पॉइंट के आसपास चल रहा है, तो वही स्टेबिलिटी सोने की प्राइसेस में भी देखने को मिलती है और उसका फायदा जो है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सभी उठाते हैं.
बिल्कुल, और इसमें बस यही है कि थोड़ा सा टाइम होराइजन जो इन्वेस्टमेंट का है वो आप लंबा रखें.
एंड इंडियंस आर फॉरएवर हंग्री फॉर गोल्ड, द कंजम्पशन ग्रीड नेवर एंड्स. मूविंग ऑन टू ऑयल, ब्रेंट एंड WTI क्रूड ट्रेडिंग लोअर इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट टुडे. ब्रेंट क्रूड डिक्रीज्ड बाय 0.1 0.12% to $81.53 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI also decreased by 0.14% to $77.63 per barrel when reports last came in.
आज के लिए बस इतना ही. वक्त बता रहे हैं कि कार्यक्रम मार्केट मंत्रा हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा. विशाल, आप आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.
Thank you so much.
Vishal Dayaji. And before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic equity benchmark indices end almost flat. Sensex closes at 76,457. Nifty settles at 23,265. Centre announces 1,39,750 crore rupees tax devolution to the states. And Brent crude trading above $80 per barrel in global crude market. Well, that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Harsh Ranjan, signing off. Namaskar.
Namaskar.